ਸਾਖੀ 42 ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਬਦਲਿਆ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕਾਂਡ ਨੰਬਰ 28 ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਬੜੀ ਅਦਭੁਤ ਹੈ। ਦਿਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦਲਦਿਆਂ ਹੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਹਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਪਕਾਰ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰ ਦਾ ਭਾਵ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਚਾਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਨਮਾਨ ਮੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹਾ ਇੱਕੋ ਵੀਰ ਹਾਂ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਜੰਗ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬਾਹੂਬਲ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਦ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾ ਮਿਲਦੀ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਉਪਹਾਰ ਹੈ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਕਰ ਉਗਮਿਆ ਅਤੇ ਵਧਿਆ। ਸ਼ੋਕ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਚ ਨਾ ਫੁਰੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਚੜਿਆ, ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਟੁਰਾਇਆ, ਫਿਰਾਇਆ, ਦੌੜਾਇਆ, ਕੁਦਾਇਆ ਅਤੇ ਟਪਾਇਆ। ਘੋੜਾ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੂਰਤ ਸੀ ਤਿਵੇਂ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਸੇ ਨੇ ਸੜਾਇਆ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੀ ਗਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ, ਆਂਢੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਅਤੇ ਮੇਲੂਆਂ ਗੇਲੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਦੌੜ ਵੇਖ ਕੇ ਵਾਹ ਵਰੋੜਾ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਘੋੜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਵਿਰੋਲਾ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਡੇਰੇ ਆਇਆ, ਘੋੜਾ ਤਬੇਲੇ ਬੱਧਾ, ਕਾਹੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ, ਆਪ ਘਰ ਆਇਆ, ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰੇ ਅਤੇ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਤੂਫਾਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਦਾਤਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਹ ਉਲਟੇ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਲੈ ਬੈਠਾ। ਖਿਆਲ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪਾਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਤੋਹਫੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੱਕ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵਧੀਕ ਨਿਗਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਕਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕਦ ਕਾਮਤ, ਡੀਲ ਡੌਲ ਅਤੇ ਵੀਰਤਾ ਹਨ ਇਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਥੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੀਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ? ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨ? ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਦੇਣਾ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਨ ਲੱਗਾ। ਅਸਮਾਨ ਖਾਨ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਦਾ ਜਵਾਈ ਸੀ। ਅਸਮਾਨ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਪੁਸ਼ਾਕ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਭਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੱਬਦੀ। ਘੋੜਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋੜਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰ। ਅਸਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ, ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਹੁਰੇ ਪਾਸ ਗੱਲ ਨਾ ਮਨੀਂਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਸੱਸ ਪਾਸ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਵਿਥਿਆ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਵਾਂ ਘੋੜਾ ਅਤੇ ਜੋੜਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਦ ਤਾਂ ਸੁੱਖ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਕੁਛ ਖਾ ਕੇ ਆਤਮਘਾਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਦੀ ਤੀਵੀਂ ਜਵਾਈ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕੰਬ ਗਈ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਦੀ ਤੀਵੀਂ ਨੇ ਪਤੀ ਅੱਗੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਨਾ ਮੰਨਣ 'ਤੇ ਝਗੜਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੀਵੀਂ ਨੇ ਕਰ ਕੱਤਰ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਘੋੜਾ ਅਤੇ ਜੋੜਾ ਅਸਮਾਨ ਖਾਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਗਏ। ਮੁੜਨ ਵੇਲੇ ਅਸਮਾਨ ਖਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੁੱਜੇ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਬਾਜ਼ ਵੀ ਅਸਮਾਨ ਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਅੰਦਰ ਲੁਕਾ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੀਰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਢੰਡੋਰਾ ਦਿਵਾਇਆ ਪਰ ਬਾਜ਼ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਦਮੀ ਭੇਜ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਆਇਆ ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜੋੜਾ ਪਹਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦ ਘੋੜਾ ਜੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਉਣ ਅਤੇ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਪਹਿਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ। ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਵਿੰਗੇ ਰਾਹ ਦਾ ਆਰੰਭ ਮੁੱਢ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਖੜਨ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਐਵੇਂ ਆਖਣ ਮਾਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਦ ਇੱਕ ਵੇਰ ਪਾਂਧੀ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤਿਓਂ ਉੱਕ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਗਿਆ ਫਿਰ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ झूठ ते सच दी गल है। असल सच है ते ओ दसन विच कोई कष्ट ते तकलीफ नहीं, बनावट बनाउण विच झूठ दा ही सारा पसारा रचना पैंदा। पेंदे खां गुरु दरबार हाजिर होया, गुरु जी दियां पुछां दा उत्तर ओदे पास नहीं सी। जे ओ सारी गल ज्यों की त्यों दस दिंदा तद सतगुरु जी ने उस नूं की कहना सी। पेंदे खां दे दामाद दी अड़ सुन के उन्हां पेंदे खां दी दिलबरी लई गल नूं विसार देना सी, पर ओह तीवी दे आखे लग के बाज दा पता देण तों उका ही मुनक्कर हो गया। कई वार पुछण ते वी उसने इको ही गल कही कि बाज दा मैनूं कोई नहीं पता, मैं ढंडोरा फरवाया, लोकां दे घरां दी तलाशी लई है, सत्रां विच बैठियां तीवियां तों पुछगिछ कीती है, पर कोई पता नहीं लगा। सतगुरु जी ने एक नहीं, दो नहीं, तीन वार पुछिया, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸਨ, ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਰੁੱਧ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਏ। ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ ਲੈ ਆਵੇ, ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਗਿਆ। ਅਸਮਾਨ ਖਾਂ ਨੇ ਕਿੱਲੀ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਲਟਕਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਖੰਡਾ ਸਰਾਣੇ ਸੀ, ਬਾਜ਼ ਵੀ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਦਾ ਹੁਲੀਆ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਰੰਗ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਉਲਟੇ ਰਾਹੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਬਦਨਾਮੀ ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਐਸੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਦੀਵ ਦੂਜਿਆਂ ਪਾਸੇ ਹੀ ਰੇੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਵੀ ਇਸ ਰਾਹ ਟੁਰਿਆ, ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਜਵਾਈ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਜਵਾਈ ਪਾਸੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਘਾਟ ਘੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਬੁੜਬੁੜ ਕਰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਬਿਦਰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਆਦਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਬੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਦ ਧਰਮ ਰਾਜ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਸ ਦੇ ਦਿਨ ਸਵੱਲੇ ਹੋਣ ਉਹਨੂੰ ਛੱਤ ਪਾੜ ਕੇ ਕੁਛ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਮੰਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਇਨਾਮ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ 'ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸਮਾਨ ਖਾਨ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਸੋ ਇਸ ਲੜਕੇ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਵਿਛੜਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਅਣਜਾਣੇ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਵਟਾਓ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵੱਧ ਖਲੋਤਾ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਵਿਗੜੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ। ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੰਦਨ ਤਾਣੇ ਤਣ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਠਾਣਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਕਾਫੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਫਿਰ ਫਿਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਕਸਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬਾਰ ਖੋਹ ਲਏਗਾ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਨਕਦੀ ਮਾਲ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਲੈ ਲਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬਲ ਸ਼ਤਰੂ ਵੱਲੋਂ ਗਾਫਲ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ 'ਤੇ ਪੈਰ ਜੰਮ ਗਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਥੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰੋ ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਸਕੋਗੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੱਸੋਂ ਇਸ ਨਿਮਖ ਹਰਾਮ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਕੁਛ ਕੁ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਵੱਸੋਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਲੜਾਈ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਣਾ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੁਤਬ ਖਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸੀ। 500 ਸਵਾਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੌਕਰੀਓਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਠਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ, ਇਸ ਅਪਮਾਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਬਦਲਾ ਨਾ ਲੈ ਲਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ ਤਦ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਗੁਬਾਰ ਕੱਢ ਸਕਾਂਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਭਰਾ ਹੈ ਤਦ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਅੰਗ ਪਾਲ ਬਣ। ਭੀਰ ਪਰ ਰੱਖਿਅਕ ਬਣੇ ਪ੍ਰਾਤਾ ਸੁਭ ਕੈ ਮੀਤ ਤਿਮ ਦਾਤਾ ਦੁਰ ਪਿਛ ਮੈਂ ਤਿੰਨਹੂੰ ਲੈ ਜਸ ਨੀਤ। ਪ੍ਰਾਤਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਜੋ ਜਿਮ ਤਨ ਸੰਚਿਓ ਹੋਤ परे पीर दारद जबै जब संकट को खोत। गुर प्रताप सूरज ग्रंथ। भीड़ पई ते प्राता मित्र ते दाता काल विच रख्या करन वाले तीन ही जस लैंदे हन। भरावां ते उपकार करना धन इकट्ठा करन तुल है। दरिद्रता भीड़ भीड़ बने ते संकटां नूं खोह देंदा है। कुतुब खां ने पेंदे खां दीआं गल्लां सुणीआं, मूँह विच उंगली पा लई ते कहण लगा, पेंदे खां तू मेरा भरा है, तेरी मदद करना मेरा फर्ज है, पर जो गल्लां तू कहीआं हन ये मैनू चंगीआं नहीं लगीआं। जिस गुरु ने तैनू पालिया हर समय हर तरह सहायता कीती, जिस दे बांह फड़न ते तू आदर ते माण पाया, जिस दे लूण तो तेरे शरीर का एक एक रोम बनिया है, उस दे विरुद्ध तेरा जंग करन लई खड़ा होना कोई चंगा नहीं समझेगा। जेड़ा भी सुनेगा सामने ना सही पिछों जरूर तैनू मंदा आखेगा। ये काम जेड़ा तू करन लगा है साऊआं दा नहीं। जे गुरु ने बाज जो तू अपने पिंड आए साहबजादे दा तेरे जवाई ने लको लिया सी ते उन्होंने वापस मंग लिया सी ता इहदे विच तैनू रोस क्यों होवे। तेरी भरियाई इसे विच है कि तू उन्होंने पास चला जाए ते माफी मंगे। पेंदे खां भराता दीआं गल्लां सुन के गुस्से विच आ गया ते कहण लगा, मैं तां इत्थों सिक्ख्या लैण नहीं आया, मैं गुरु दे नाल लड़ के आया हाँ ते पठान दा पुत हो के उहदे सामने सिर निभावां, ये गल अणहोणी है। मर जाना कबूल है पर उन्हां पास जाना कबूल नहीं। जे तू मेरी मदद कर सकदा है तां कर, नहीं तां गुरु दी महिमा दे वाक कह के मेरा दिल ना दुखा। कुतुब खां, जद किसे दे बुरे दिन आउंदे हन तां उहदी पहली निशानी ये हुंदी है कि वह किसे सज्जन दी नसीहत ते कम कन नहीं तरदा। कुतुब खान कहे, साच तू पर लिहो बिचारी, दीन अमान पछाण कै मैं बात उचारी। साच तू पर लिहो बिचारी, दीन अमान पछाण कै मैं बात उचारी। जिन तू दया खा उतरै तिन मारन चाहा, कहो ईमान तब कृत रहो उच दीन भुलाहा। गुर प्रताप सूरज। पेंदे खां, एक तां तू मेरा उंज उंज भरा है ते दूजा दीन दा भरा है। किसे दीनदार वास्ते एक गल नहीं शोभदी कि वह मुसलमान दे मुकाबले ते काफर दी महिमा करे। फिर तू जिस इलाके दा सूबा है गुरु उस इलाके दे बादशाह दा वैरी है, उस दे हक दी गल करना तेरे वास्ते चंगी नहीं। पेंदे खान दीआं इन्हां गल्लां ने कुतुब खान नूं चौंका दिता ते उह समझ गया कि पेंदे खान ने जिस दा उम्र भर खादा है जे अज उस दे उहदे विरुद्ध होया फिरदा है तद मेरे विरुद्ध बादशाह पास इहदा कुछ जा कहना तां इस लई इक सधारण गल होवेगी। पेंदे खान नूं खतरनाक आदमी जाण के कहण लगा, भरा तू किसे गल दा फिक्र ना कर, मैं हर तरह मदद करन वास्ते तेरे नाल हाँ। चंगी गल इह है कि लाहौर चल के तू अपना हाल दसें, उत्थों तैनू मदद मिल जाएगी ते फिर असीं सारे मिल के चढ़ाई कर देवांगे। पेंदे खां नूं कुतुब खां दी इह गल पसंद आ गई ते फरियादी होण लई लाहौर पुज्जा। लाहौर दरबार विच पेंदे खां पुज्जा, अपनी विथिया सुनाई ते दस्सिया, मैं निक्के हुंदिआं दा गुरु हरगोबिंद साहिब पास हाँ, उहनां दे बल प्रकर्म दा जाणू हाँ, पिछले जंगां युद्धां वल विच उहनां दे वल्लों होके शाही सैना नाल लड़दा रिहा हाँ। गुरु दी जित मेरे बाहूबल नाल सी, मेरी इस बहादुरी जां निसारी दे बदले उहनां ने मेरा घर ते माल खोह लिया है ते पिंडां दे जट्टां तों मरवाया है। मेरे ये कहण ते कि मैं बादशाह पास फरियादी जावांगा मेरा होर भी अपमान कीता है। अब मुझको दिओ लश्कर संग, करो जाए मैं दीर्घ जंग, गुर कै घर दुपटार गह पावो ऐंच आपके निकट लियावो। पेंदे खान तब नाम कहाऊं, नतर आए मैं मुख ना दिखाऊं। गुर प्रताप सूरज। बहादुर शाह ने पेंदे खां दीआं गल्लां सुनिया ये समझ के कि ये गुरु का पेती है, जे कदी फौज दे नाल इहनू भेजिया गया तद इहदी टोह ते पते देण ते गुरु ते फतेह पाणी सौखी हो जाएगी ते इंज गई होई कीर्ति मुड़ आएगी। तलवार ते पान दा बीड़ा दरबार विच रखिया ते कहा, जेड़ा सूरमा इस जंग का बीड़ा उठाना चाहे सामने आवे। काले खान नाम का एक सरदार बैठा सी, उन्हें दिल विच सोचिया कि मेरा भरा मुखालस खां गुरु दे नाल जंग करदा मर चुका है, मैं उसका बदला लेना है, मैनू हुणे अवसर हथ आ गया है। जे मैनू आग्या मिल जाए तो बादशाह का कम हो जाए, तो दूजा मैं अपने भरा का बदला लैके छाती ठंड कर लवांगा। यह विचार के उठ कर जोर तो बोलियो सोए, हजरत हुकम मोहे कौ होए, सेना सकल जंग कर कह हर गोबिंद जीवत गै लह, निकट आपके जद हम लियावें प्रात मेरे की करक मिटावें, परयो रिदा रिस ज्वाल प्रकाशी सो सब गुर पर करव निकासी। गुर प्रताप सूरज। बादशाह ने काले खां नूं जंग दी कमान सौंपी, ख्वाजा अनवर खां नाल होया। पेंदे खां ते उसदे दामाद असमान खां ने भी घोड़े संभाले ते कुतुबद्दीन जलंधर वाला भी साथ दिता। फौज दे लाहौर तों चलन लग्या, शराब दे दौर चलन लगे ते इह सरदार नशे विच मस्त होए अंड खंड बगदे करतारपुर वल तुरे। सन 1691 बिक्रमी 1634 AD विच शाही फौज ने लाहौर वालों कूच किया। कवि संतोख सिंह जी काले खां ते उहदे साथियों की चढ़ाई का जिक्र इस तरह करते हैं। मनो टीट गन गमने ऐसे, हिम में गर्न जात है जैसे, मनो मकौरन लागे पंख, समुख समुख बेहंगन चले असंख। जिवें टिड्डी दल बर्फ विच गर्न टुर पैंदा है, मानो कीड़ियां नूं खंभ लग पए हन ते पंछियां दे सामने जो इन्हां नूं खा जांदे हन चले हन। ये फौज कूच करदी ब्यासा दे कंढे पुजी, दूर नेड़े तो मलाह इकट्ठे कीते ते किश्ती दे पूर भर के किश्ती दे पूर भर के सैना पार होर लंघाउण लगी। पंजे सरदार पार होए, दुआबे दे राह पए ते इक छां वाली थां ते फौज ने डेरा जा कीता। रात उत्थे रहे, सवेरे पंजे सरदार इकट्ठे होए, जंग किवें छेड़ी जाए दे विषय ते गलबात होण लगी। कुतुब खां सूबा जलंधर ने कहा, गुरु बड़ा बहादुर है, अगे कई लड़ाइयां विच उहदे हथ वेख चुके हाँ, हुण इको ही गल जापदी है कि इकट्ठे हो के जाके एक दम चारे पासियां तों घमसान दा युद्ध छेड़िए। पेंदे खां ते उसदा जवाई असमान खान कहण लगे, सोच विचार की कोई लोड़ नहीं, साढ़े हथ वेखने, असी वह कुछ कर दसांगे जो किसी के वहम गुमान विच भी नहीं हो ना होवे। काले खां की राय सी कि पेंदे खां ते असमान खान की गुस्से विच सोचण वाली गल नहीं सोच रहे। वैरी दा बल दल किले ते खजाना इन्हां गल्लां दा अनुमान ला ला के अगे कदम उठाया जावे। पेंदे खां दीआं गल्लां ते भरोसा करके बिना सोचे कोई गल नहीं करनी चाहीदी। अनवर खां ने काले खां की गल की पुष्टि की। ख्वाजा अनवर खां करतारपुर के हालात वेखण लई नीयत होया। ये अगों कई वेर जलंधर के हाकम वालों एलची होके जा चुका सी। करतारपुर दीआं गलियां कूचियां ते महल्यां दा जाणू सी। गुरु जी दे दीवाना विच आया, शहर विच फिरिया, सिख सिपाहियां विच रिहा। इत्थों वापस जाके इसने काले खां नूं खबर दित्ती कि गुरु साहिब इस तुहाडे हमले तों उक्का बेखबर हन, तुहाडी लड़ाई दा उहनां नूं पता नहीं, इस वास्ते हुण तक उहनां वल्लों लड़ाई की कोई तैयारी नहीं, इस अचेत दशा विच हल्ला करना कामयाब रहेगा। यह हल्ला दिन नूं करना चाहीदा है जां रात नूं, इह तुसीं विचार कर लो। काले खां ने कुतुब खां ते पेंदे खां नूं दस्या, अनवर खां दा दस्या हाल सुनाया। काफ़ी विचार दे मगरों फैसला होया, पाछल रात परो कर हेला, करो चमू रत रेत रूपेला, पेंदा सनमुख तिनके जय हैं, बल विसाल ते गह गुर लै हैं, अल्प बाहनी मारन कहां, हते तुरत हम लस्कर महा। गुर प्रताप सूरज। पिछली रात हल्ला किया जाए, गुरु जी की सेना थोड़ी है ते साढ़े पास लश्कर भारी है, इस वास्ते गुरु जी की सेना नूं सहजे ही मार लवांगे। इन्नी भारी फौज पास होण ते यकीन होण जाण ते भी गुरु जी जंग वालों अचेत हन, फिर भी गुरु जी दे सामने जाण नूं किसी का हिया नहीं पिया। इस जंग की जड़ पेंदे खां सी, इस वास्ते पेंदे खां नूं गुरु जी दे सामने जाण लई कहा। धीरमल नूं इस चढ़ाई की खबर मिली, उहदा मन अधीर हो गया ते उसने काले खां नूं चिट्ठी लिखी कि मैं पातशाह दा अनुसारी हाँ, तुहाडे नाल वैर विरोध नहीं करांगा। चिट्ठी पढ़ के काले खां ते उस दे सलाहकार खुश हो गए, ये समझ गए कि घर पाट गया है। उन्होंने जित होर भी नेड़े दिसन लगी। काले खां ने धीरमल नूं चिट्ठी लिखी कि इस तरह दीआं खबरां देंदे रहो जिन्हां तों फतेह हो जाए। ये चिट्ठी धीरमल पास पहुँचा दिती। लाहौरों कूच करन दे दिन तों लै के हुण तक चढ़ाई की खबर गुप्त सी। जद कोई पुछदा तद उत्तर ये देंदे कि रोपड़ दे पीर दी मज़ार ते काले खां सुखना चनाउण जा रहा। दुआबे विच जिन्ने पठान सन सारयां नूं हरकारे भेज के मंगा लिया। सिपाही ते अफसरां दी बड़ी खातरदारी कीती। अगे पिछे भारी सैना इकट्ठी हुई वेख काले खां बड़ा खुश होया ते उहदे दिल विच लड़ाई करन दी उमंग वधण लगी। रात दे हनेरे ने दिन दी रोशनी नूं लुका लिया। काले खां ने फौज विच गोली बरूद वंड दित्ता, घोड़ियां उत्ते जीना पा लईआं, शराबां पी लईआं। ये लश्कर इंज तुर पिया मानो समुंदर उछाले खांदा वधदा आ रहा है। जद अद्धा कोई सफर आए तद कुतुब खां दा छोटा भरा मलक दातार खां अपनी सैना लैके आ मिलिया। दातार खां दे पुछण ते काले खां बोलियो, गरबाए केहर बली रह इस थाए, बहुत जीव संघारण करे कोबल तारन आगे अरे, तिसके हित सिकार को चाले अब संघार खोज विसाले। गुर प्रताप सूरज। छोटे मीर जाके डेरा कीता। ਉਹ ਸੈਨਾ ਜੋ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ। ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੌਂਸਲ ਸੱਦੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਮਗਰੋਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪਾਸ ਜਾ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਦੇ ਕੂਚ ਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਖਬਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਸ਼ਕਰ ਤੇ ਹਰ ਪੜਾਓ ਤੋਂ ਆਪ ਜਾਣੂ ਸਨ। ਸੰਧਿਆ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਬਰੂਦ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾਗ ਪੈਣਾ। ਰਾਤ ਡੇਢ ਪੈਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ। ਧੌਂਸਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚੋਟ ਲਾਈ। ਸਿੱਖ ਅੱਗੇ ਹੀ ਸਾਵਧਾਨ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਸਹੁੰ ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਸਨ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਤੁਰਕਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਆ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣਾਈ। ਧੀਰ ਤੇ ਵੀਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਪ ਕੀਨ ਪਾਠ ਚਿੱਤ ਏਕ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਭ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸੋਏ, ਪਠ ਅੰਤ ਕੀਨ ਸਿਰ ਕੋ ਨਿਵਾਏ, ਤਬ ਸੁਨੀ ਤਫੰਗਨ ਧੁਨ ਉਠਾਏ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਲੱਖੂ 500 ਜਵਾਨ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਏ, ਮੇਰ ਚੰਦ ਤੇ ਅਮੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਯੋਧੇ 400 ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸੱਜੇ ਤੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥੋਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੇ 900 ਘੋੜਸਵਾਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਸਤਰ ਸਜਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਤੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਖੜੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰੱਖਣ ਤੇ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ। ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ। ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਫਰੰਟ ਪਹਿਲੇ ਹੱਥ ਹੀ ਢੇਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੂਰਮੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਵੱਧ ਕੇ ਲੜਨ ਲੱਗੇ। ਗਰਦ ਇੰਨੀ ਉੱਡੀ ਕਿ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੋਤੇ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੰਦੂਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਆਹੂ ਲਾਹ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਲਹੂ ਲੁਹਾਣ ਤੇ ਸੱਥਰਾਂ ਵਾਂਗ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਿਆ ਦੇਖਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕੜਕ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਦੁਆ ਘਟਕਾ ਮੈਂ ਫਜਰ ਹੈ, ਸਰਿਓ ਨਾ ਕਾਰਜ ਕੋਏ, ਪੁਰ ਸਮੀਪਤਾ ਨਹਿ ਪਈ ਕਹਾਂ ਮਾਰ ਲੁੱਟ ਹੋਏ। ਤੁਰਕ ਸੈਨਾ ਲੁੱਟ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤਕੜੀ ਹੋ ਅੱਗੇ ਵਧੀ। ਇਧਰੋਂ ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥੋ ਹੱਥ ਲਿਆ। ਬਹੁ ਨਮਸਕਾਰਨੀ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ੇਰ, ਸੁਪਟਨ ਸਰੀਰ ਕੋ ਫੋਰ ਫੋਰ, ਕਰ ਪ੍ਰਾਣ ਹਾਨ ਚਿਤ ਡਾਲ ਡਾਲ, ਗਨ ਲੱਥ ਫਤ ਹੈ ਕਾਲ ਕਾਲ, ਬਹੁ ਤੁਰਕ ਤਰੰਗ ਅੰਬਾਰ ਲਾਗ, ਰਨ ਖੇਤ ਪਏ ਹਨ ਤਿਆਗ ਤਿਆਗ, ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਹਾਰ ਤੇ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਦੁੱਖ ਮਹਾਂ ਘਾਵ ਗਨ ਖਾਏ ਖਾਏ, ਗੁਰ ਸੂਰ ਘੋਰ ਤੂੰ ਲਾਗ ਕਾਏ, ਪ੍ਰਭ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਵਤ ਸਹਾਏ, ਤੁਰਕਨ ਹਜ਼ਾਰ ਹੂੰ ਪ੍ਰਾਣ ਹਾਨ, ਮਿਲ ਧੂਰ ਪਰੇ ਸੁਪਤੇ ਮਹਾਨ, ਬਹੁ ਪਯੋ ਪੰਕ ਸ਼੍ਰੋਣੰਤ ਹਚਾਲ, ਇਮ ਲਰਤ ਮਰਤ ਰਣ ਕਾਲ ਮਾਲ, ਇਮ ਲਰਤ ਮਰਤ रण घर कर थित गई जम तम समेत नव चढ़ियो दिनेश प्रकार हेत थित गई जामनी तम समेत नव चढ़ियो दिनेश प्रकाश हेत। गुर प्रताप सूरज इस जंग विच करतारपुर एक दीवे दी मानद सी जिस ते तुरक पतंगे अगे वध वध ढेरी हो रहे सन। दिन चढ़न तक अद्धी सैना मरवा के काले खां दा कलेजा धक धक करन लगा। पेंदे खां ते उहदे साथियां ने जिहड़े सब्ज़ बाग दसे सन उहनां विच कोई असलियत ना दिसी। अनवर खां उहनां दा अपना आदमी सी, उहदा इह कहिणा कि गुरु जी जंग वल्लों बेखबर हन उह वी सही ना निकलिया। उसने सारे सरदारां नूं इकट्ठा करके कहा कि हुण तक दी साडी चाल पुट्ठी पई है, जंग जिन्ना लम्मा होवे उन्ना ही नुकसान ज्यादा होवेगा ते कामयाबी शुभे विच होवेगी। इस वास्ते सारे पासिओं करतारपुर नूं घेर के हल्ला करना चाहीदा है। कुतब खां चढ़दे वल, अनवर ते असमान खां दक्खण, पेंदे खां उत्तर ते काले खां आप पछम वाले पासे होने दा फैसला कीता। 10,000 सवार नाल लए ते धौंसे वजा के अगे वधे। गुरु जी नूं वैरी ने चारे पासिआं दे हल्ले दी सूह मिली। उन्हां ने वैरी दे हमले नूं रोकण लई चार पासिआं ते अपनी सैना खड़ी कीती। चढ़दे पासे जाती मलक मेहर चंद ते अमियां, दक्खण नूं भाई लखू, पछम पासे ते बिधी चंद उत्तर दिशा वल होए। काले खां नूं अपनी हार दिस रही सी, इस करके उसने सैना नाल बड़ा जोर पाया। भाई लखू उहदे सामने होया, गोलियां चलण लगियां, तीर अपना काम करन लगे ते नेजे एक एक दो दो दियां छातियां विन के पार हो रहे सन। गुरु जी किले दे पास खड़े सन, जिस नूं अगे वधदा देख के एक तीर बख्श दे तीर सप्पां वांग छूक दे योधियां नूं धरती ते सवार रहे सन। जो अगे वधिया डिग्गा, जो सामने होया सो मोया। ख्वाजा अनवर बिधी चंद नाल पुराणी रिस रखदा सी, उहने वंगारिया कमान संभाली ते तीरां ते तीर छड्डण लगा। बिधी चंद अनवर दे सामने होया ते तीरां दे मुकाबले ते तीर मारन लगा। इहदे तीर सन के मौत दे संदेशे, जिस नूं लगदे पाणी ने मंगण दिंदे सी। अनवर खां नूं सामने आउंदिआं वेख के बिधी चंद ने कहा, तूं सुत्ते शेर नूं जगाउण आया है, अपनी जान दी हुण सुख ना समझ। अनवर खां ने गुस्सा खा तीर छड्डिआ जो बिधी चंद दे घोड़े दी जीन विच लगा। बिधी चंद ने घोड़े नूं अड्डी लाई ते अनवर खां दे चारे पासे घोड़े नूं फिरा के सामने आ। तम तान कान लग रिस महान, रिपताक लच्छ छोड्यो सो बान, सम सर्प शूक चाल्यो बेसाल, बड़ बेग सहत लग शतरपाल, पंकन समेत तस होए पार, कुछ रहो दिखत बागर आकार, जग पोहे बीच सो अस सुहाए, जन तिलक लाल सुंदर लगाए, के जतन संग कै गुल अनार, बहु सजे हैं पाल राख्यो सुधार, जन बैठ निड मैं सिर निकार, एह बत्सार का मुख मुख पसार, जन बिधि चंद को क्रोध लाल, थिर पयो जाए तक शत्रुपाल, गिर पर्यो भूं पर चूम सोए, लग माए बेग जयो ब्रिछ कोए। गुर प्रताप सूरज बिधि चंद ने तीर कमान विच रखिया, कन्न तक खिच के इस नूं जोर नाल छड्डिया जो अनवर खां दे मत्थे विच लगा, खंभा समेत पार हो गया। कवि संतोख सिंह जी कहिंदे हन कि तीर दा पिछला कुछ हिस्सा बाहर रह गया, उन्हां दोवां भवां विच इंज शोभा पा रहा है कि मानो किसी ने लाल तिलक उहदे मत्थे ते लाया है, मानो बतक दा बच्चा मूँह अड के बैठा है। जां इउं समझो कि बिधी चंद दे गुस्से दी लाली अनवर दे मत्थे ते टिक गई है। तीर दे लगन नाल अनवर खां पुआटनी खा धरती ते डिग्गा, सिखां दे नारियां नाल असमान गूंज उठिया, इंज दक्खण पासे दी बाही ते हमलावरां पर फतेह हो गई। कुतब खां ने भाई लखू वाल घोड़े दा मूंह फेरिया, भाई लखू वैरी नूं आउंदिआं वेख सामने डट गया। दोहां ने तीरां दी वरखा शुरू कर दित्ती, ढालां छाननी हो रहियां सन। भाई लखू ने तीर मारिया, कुतब खां दी छाती विच लगा ते घोड़े तों हेठां जा पिया, संभलिया उठिया। इन्नी नूं भाई लखू फिर अगे वधिया, कुतब खां दे संबंधी विचकार आ गए। उन्हां चारे पासिआं तों भाई लखू ते वार करने शुरू कर दित्ते। भाई लखू ने बड़ी सूरमता नाल उन्हां दे वार बचाए, पर अंत नूं इक तीर लगण नाल आप गुरपुरी चढ़ाई कर गए। काले खां ने पेंदे खां नूं लड़कारिया कि तूं पातशाह पास जाके कहा सी कि मैं गुरु नूं फड़ देवांगा, मेरे कई सरदार ते सेना मर गई है, तू अपना बल किस वेले विखावेंगा। पेंदे खां ने कहा, तुसी कुछ जवान देवो, मैं गुरु वल जांदा हां, मेरे नाल दे सरदार उन्हां सिखां दे राह दी रोक बन जो गुरु की सहायता लई आउण, फिर वेखो मैं अपना कथन किवें पूरा करदा हां। असमान खान नाल लैके पेंदे खां गुरु जी वल आया। जानी जान सतगुरु ने पेंदे खां दी दिल दी गल जाच लई, फौज तो एक पासे हो गए, सिखां नूं अपने नेड़ियों हटा दिता ते पेंदे खां नूं अपनी जोर अजमाई का समां दिता। बाबा गुरदित्ता जी अगे वधे, उन्होंने असमान खां नूं अगे वधनों रोक लिया। गुरु जी जिथे खड़ोते सन उत्थे एक छोटी जिही दीवार सी, विरोड़ा उस नूं टप के अंदर आ गया। पेंदे खां गुरु जी दे नेड़े आया। गुरु जी ने उस वल वेख्या ते कहा, पेंदे खां तू सूबियां ते बादशाह पास इकरार कीता सी कि मैं गुरु नूं फड़ के लै आवांगा, इस करके पहली वार तेरी है, बल ला लै तां जो तेरे दिल विच कोई अरमान ना रह जावे। पेंदे खां ने खंडा संभालिया ते गुरु जी ते वार कीता। गुरु जी ने पैर दे नाल घोड़े दी रकाब अगे कर दित्ती, पेंदे दा वार खाली गया, सतगुरां दा वार भी विंगा ना होया। पेंदे खां ने फिर खंडा संभालिया ते पूरे जोर नाल उछल के वार कीता, गुरु जी ने सामने ढाल कीती, ये वार भी खाली गया। सतगुरु जी धीरज धार उसे तरह उहदे सामने खड़े हन। हुण पेंदे खां नूं चिंता पै गई कि गुरु जी अत सूरमे हन, मैं जो अनुमान लाया सी वह गलत सी। गुस्से विच आ दूजे पासे हो फिर खंडा चलाया, गुरु जी ने ढाल अगे कीती, खंडा ढाल दे फुल ते लगा ते दो टुकड़े हो गया, मुठ पेंदे खां दे हत्थ विच रह गई। पेंदे खां ने चाहिया कि जफ्फा मार के गुरु जी नूं चुक लवां। पेंदे खां हिमाला पर्वत नूं चुकना चाहुंदा है ते लोचदा है कि सूरज नूं खीसे विच पा लवां। घोड़ियां उत्तर गुरु जी दे घोड़े नूं जफ्फा मार के खड़ा कर लिया। गुरु जी ने घोड़े नूं अड्डी मारी, घोड़ा इशारे नाल हवा हो जाण वाला सी, परंतु पेंदे खां ने हिलण ना दिता। गुरु जी ने ढाल संभाली ते पेंदे खां दे सिर ते इस जोर नाल मारी कि उह चक्कर खा के पिछाड़ जा पिया। इहदा शरीर पसीने नाल नहाता पिया सी ते बेहोश सी। सतगुरां ने इस अधमोई हालत विच उस ते वार नहीं कीता। हजूर घोड़े तों उतर पए, पेंदे खां पास खड़े हो गए। दोहां धिरां दे वीर गुरु जी दी परले दर्जे दी वीरता ते दिल दी विशालता देख के दंग सन। जिन्ना चिर पेंदे खां बेहोश रहा गुरु जी ने कुछ नहीं कहा। जद होश आई पेंदे खां उठिया, तद सतगुरां ने कहा, बोले बंगार सुन रहे पठान, मम वार देहो बन सावधान, कर लीन तीन तै बल लगाए। हे पठान, तू अपने सारे बल नाल तीन वार कर ले हन, हुण तैयार हो ते साडे हथ वेख। पेंदे खां क्रोध विच आ कहण लगा, हुण तुसी मेरे काबू विच हो, तुहानूं वार करन दा मौका नहीं देवांगा, तुसी मेरे पासों छुट नहीं सकते, मैं चुक के लै जावांगा, जो कुछ कर सकते हो कर लो। गुरु जी पेंदे खां दे नेड़े हो गए, अगे ढाल कीती ते चाहिया कि इक्को हथ नाल ही उहदे दो टुकड़े कर देण। पेंदे खां इस दाओ विच सी कि गुरु जी नूं जफ्फी पा के उठा ले ते चुक के बाहर लै जाए जिथों कोई छुड़ा ना सके। यह सोच के वार रोकण लई अगे कीती तलवार पिछे कर लई ते गुरु जी नूं फड़ना चाहिया। गुरु जी ने उहदे दाओ नूं बचा के डाढ़ी सफाई नाल वार कीता, जिवें तरखाण करतब लै के लकड़ी दे दो टुकड़े कर दिंदा है, तिवें पेंदे खां कारे काओ खा के डिगा। जद पेंदे खां हनेरी दे झूणे नाल डिगण लगे ब्रिश वांग धरती ते डिगा, तद सतगुरु ने कहा, तेरा जन्म मुसलमान दा है, कलमा पढ़। पेंदे खां दीआं अखां अगे अंत समें दा चित्र आ गया। गुरु जी दीआं मेहरां प्रतिपालना उदारता नेकी ते प्यार दे सरूप चित्र बन के अखां अगों गुजरन लगे। फिर अपने वल्लों कीती लूण हरामी विश्वास घात चेते आए, अखां विच नीर भर आया, पछतावे ने रंग जमाया, हथ जुड़ गए। कवि संतोख सिंह जी दसदे हन कि दोहरा गिरन लग्यो पैंदा कहे, सिर गुर त्रव तरवार पई रूप कलमा अभै, करिया मोहे उधार। दोहरा पेंदे खां जब दीन है, कीनस बाक बखान, श्री गुर हमरे हाथ की मिसरी कलमा जान। गुर प्रताप सूरज। पेंदे खां दे जुड़न वाले बुल्लां विच्चों एक मध्यम जिही आवाज़ आई, हे सतगुरु, हुण मेरा कलमा आप जी दी तलवार ही बन गई है, ਇਸੇ ਨੇ ਪਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੇ। ਨਿਰਵੈਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸਾਂ ਤੇ ਪਏ ਤੜਫਦੇ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਢਾਲ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਕੀਤਾ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸਦਾ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਕਾਲੇ ਖਾਂ, ਕੁਤਬਦੀਨ, ਅਨਵਰ ਖਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ ਹੋਈ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।